स्थान कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अगले स्थान कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहे हैं। अगला स्थान ब्रजेश्वर महादेव है। ब्रजेश्वर महादेव, ये जो ब्रजेश्वर महादेव का लिंग है, ये स्वयं वृषभानु महाराज ने स्थापन किया था। स्वयं वृषभानु द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है और ये पाडर वन में स्थित है। पाडर वन जो जाएंगे हम वहां पर, और यहाँ पर वृषभानु महाराज ने स्वयं शिव जी के सामने बैठकर तपस्या की थी। तो ये वृषभानु तपस्थली है, बीच जंगल में है। और कुछ लोग कहते हैं कि वृषभानु महाराज ने कामेश्वर महादेव काम्य वन में जाकर तपस्या की थी राधा रानी की प्राप्ति के लिए, और कुछ लोग कहते हैं ब्रजेश्वर महादेव ने की थी। लेकिन सत्य है कि दोनों जगह की थी, क्योंकि वृषभानु महाराज नंद महाराज जी बहुत शिव जी के पास जाकर आराधना प्रार्थना करते थे। उनका भाव ये नहीं कि हमको ये मिलना चाहिए, अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, जो शिव जी का वरदान देने का सामर्थ्य है ना, वो कला में वरदान देते हैं, अच्छी पत्नी के लिए वरदान देते हैं, पति के लिए वरदान देते हैं, ये सब मांगने के लिए ब्रजराज जाते नहीं वहाँ पर। वो शिव जी को तो परम वैष्णव के रूप में भजते हैं, भोलेनाथ। तो अभी कुछ 50 साल पहले की बात है ये, आज भी वो जो ब्रजेश्वर महादेव है ना, वो एक खेत में है, तभी भी खेत में था। तो वो किसान जो था ना, वो ऐसा हल चला रहा था, अभी भी चलाने का समय चल रहा है, ब्रज में सब जगह पर हल चलाए जा रहे हैं। तो उसका हल है ना, एक जगह पे आकर हमेशा अटकता था, पूरा घूम के आने के बाद वापस वही अटकता था। तो फिर उसने सब रोक दिया अपना काम और वो देखने लगे उसको, तो उन्हें शिवलिंग मिला वहाँ पर। उसको लगा, अरे शिवलिंग वही खेत में क्या कर रहा है, उसको तो कहीं मंदिर में रखना चाहिए। फिर उसको खुदवा देते हैं और फिर उसको खुदवा कर हम मंदिर में रखते हैं। तो उस दिन ना उसने शाम तक खोदा, जितना खोदा उसके नीचे शिवलिंग अभी भी है, उसका बेस जो है उधर नींव उधर तक है। तो संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, तो बंद करके वो सो गया, फिर कल आगे का खोदूंगा। तो रात में वो शिव जी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मैं ब्रजेश्वर महादेव हूँ, वृषभानु महाराज ने यहाँ पर बरसाने में मेरे पास तपस्या की थी, उन्होंने मुझे स्थापन किया था। तुम अगर पाताल तक भी खोदोगे तो मेरा अंत नहीं पाओगे, मुझे यही रहना है, यहाँ से निकलना नहीं मुझे। तो मैंने इस बात पर बहुत विचार किया, बाद में मुझे ऐसा अनुभूति हुई कि शिवजी और उनके जैसे देवता जो हैं, जैसे नारद मुनि है, जैसे भवानी देवी है, भवानी देवी श्री कृष्ण की लीला में पूर्णमासी बनी हुई है, नारद मुनि नारायण भट्ट बनकर आए हैं, वो सब लोग अपना अपना बहाना ढूंढ कर आते हैं। और जैसे आशेश्वर में वो खिलौना बनकर बैठे हुए हैं शिव जी महाराज, ऐसे वो अपने आप को धन्य मानते हैं अगर भगवत लीला में कहीं ना कहीं कुछ सेवा, कुछ रोल मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं ना विशाखा माता जी को कि माता जी एक तो बचपन का रोल दो, बोले आपको मेरे को रोल दे दो बस, ड्रामा में मुझे खड़ा रहने का है बस, उतना भी चलेगा, आई वॉन्ट टू बी इन ए ड्रामा। ऐसे सभी देवता भगवान की लीला में कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो शिव जी ने वहां पर क्यों बोला कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो जगह उनके वो रोल का प्रमाण है ना, वो अगर वहां से उठ के कहीं बैठ गए तो वो स्थान का महत्व खत्म हो गया। उस जगह पर वृषभानु महाराज जी ने उनको स्थापन किया था, उस जगह पर उनका तपस्या किया था, तो ये शिवजी के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। इसलिए शिवजी ने वहां से निकलना मना कर दिया और अपनी नींव को इतना बढ़ाया कि वो उसको धार नहीं पा। इसलिए फिर उस किसान ने उसी खेत में थोड़ा जगह निकालकर शिवजी का मंदिर बनाया और आज भी वहीं वो विराजमान है। और वो इतना बड़ा खेत है पाडर वन का, उसमें ये जहाँ मंदिर है यहाँ पर इतना रमणीय अनुभव आपको आएगा, जितने जितने पवित्र पेड़ वृक्ष के रूप में हम जानते हैं वो सारे उसी घेरे में हैं, छोटे से घेरे में, छोटी सी जगह है, तो छोटा सा घेरे में वो इतना पवित्र अनुभव आता है। तो ये है ब्रजेश्वर महादेव। कई साल तक मैं इनको देखने के लिए तड़प रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैंने आई कैंप में टाइम निकाल कर, चलो गाड़ी निकाल के गया मैं, तो मुझे लगा कि वो भानुघर के पास में वो होगा। तो मैं वहां गया तो पूछा कि ये ब्रजेश्वर महादेव है, नहीं नहीं ये तो दूसरे महादेव है। उतने में हमारी गोसाई माता जी हमको मिली और वो भी उस शिव जी को जल रही थी। बोले मैया चलो ना मुझे दिखाओ ब्रजेश्वर महादेव। हाँ चलो जो गाड़ी है तो चलो। तो वो बैठ गई और फिर वो मुझे ब्रजेश्वर महादेव ले गई। मुझे ऐसा उस दिन इतना दिव्य अनुभव का अनुभव हुआ उस दिन कि ब्रज के एक एक स्थान जो है ना, वो दर्शन जब नया होता है, कृपा ऐसी है भगवान की कि हर समय जब ब्रज में आता हूँ 30 साल से, हर समय एक नए स्थान का दर्शन होता है जो अभी तक देखा नहीं है। और ये भी बताता हूँ मैं आपको कि ब्रज में ऐसे अनंत स्थान है कि उसके पार्ट प्रसंग भी हमने देखे नहीं है अब तक, कितने अनंत स्थान है। रूप गोस्वामी अपने ब्रज के महिमा के उपलक्ष्य में लिखते हैं कि ब्रज में 66 अब्ज लीला स्थलियां हैं, 6,600 मिलियन लक्ष लीला स्थली है, 66 अब्ज लीला स्थली है। इसका मतलब हर कण कण में लीला होगी ना। अभी कितने कणों में बिल्डिंग खड़ी है, कितने कणों में आश्रम खड़े हैं, कितनी लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी है, लीलाएं भी लुप्त हो चुकी है, लीला स्थली भी लुप्त हो चुकी है। हमारा भाग्य कुछ कुछ हमारे आंखों में देखने के लिए अभी तक उपलब्ध है। हाँ, हो सकता है हम जब दादा नाना बनेंगे और हमारे पोतों को लेकर आएंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर ना ऐसे हुआ करता था, हमने दर्शन किया है। इसलिए आज हम हमेशा कहते हैं जब भी आप ब्रज की यात्रा में आते हो ना, ये समझ के आना कि लास्ट यात्रा है, और दिल में सब भर लो आप जो आपको दर्शन मिल रहे हैं। आगे जाकर क्या होगा हु नोज, कैसे रहेगा वो, कैसे स्थिति में होगा और होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है। इसलिए बृजेश्वर महादेव का स्थान बहुत सुरक्षित है, वो पाडर वन में है। और वहाँ की लीला और एक ऐसी है कि वहाँ पर ना एक बार कृष्ण आए और उन्हें बांसुरी बजाना शुरू किया, बांसुरी बजाते ही बादल इकट्ठा हुए। हर बार ऐसे ही होते हैं, आपको लगेगा प्रभु जी सेम बताते हैं, क्या करें सेम ही होता है तो मैं क्या बताऊंगा। तो मुरली बजाते हैं तो बादल इकट्ठा होते हैं, बादल इकट्ठा होते हैं फिर हल्की हल्की वर्षा करते हैं, हल्की हल्की गड़गड़ाहट करते हैं, और फिर वो कृष्ण की जो वस्त्र है वो भीगने लगते हैं, पीताम्बर उत्तरे सब भीगने लगता है, और बांसुरी फिर भी बज रही है। तो गोपियां बड़े कुतूहल से आते हैं वो आवाज सुनकर, और देखती हैं और बोलती हैं कि देखो देखो कितना भाग्य है मुरली का, सब वस्त्र भीग गए कृष्ण के, ये भी भीग रही है फिर भी बज रही है, देखो कितना भाग्य है, कितना सुंदर सुंदर स्वर निकाल रही है, मन को मोहित कर रही है। ये जो बांसुरी है ना उसका गोपियां बहुत गौरव करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं है, उनके द्वेष नहीं है, लेकिन बहुत गौरव करते हैं कि क्या भाग्य है इसका, हमें कृष्ण को मिलने के लिए सूर्यास्त तक इंतजार करना पड़ता है, वेट करते कभी सूरज ढल जाए कि हमारे मिलने का समय शुरू हो जाएगा। फिर ग्वाल बाल रात भर तरसते हैं कब सूरज उगे होगा फिर हम जाएंगे। तो सीदामा जो है ना, सीदामा वो तो इतना तड़पते हैं रात भर। चलो ये पूरा गोपी का एक मुरली का पहले बताता हूँ, बाद में उसकी कथा बताता हूँ। तो वो गौरव करते हैं कि क्या भाग्य है इसका, इसकी माँ तो बांस है ना, जो यमुना किनारे उगती है, उस बांस में क्या होता है, लेकिन जब बांस की मुरली बनती है तो उससे क्या स्वर निकलते हैं, पूरा जग मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि महाविष्णु जो योग निद्रा में सोते हैं और सो के ही पूरा निर्माण करते हैं, जगने की भी जरूरत नहीं उनको, निद्रा में रहते, खाली सांस लेकर रहते, बस सांस लेने में पूरा काम हो जाता है उनका, वो भी जग जाते हैं। जब ये ध्वनि जो है सारे आवरणों को काटते हुए जब महाविष्णु को पहुंचते, महाविष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, उसे झूलते हैं, फिर वो विरजा को काट कर वैकुंठ में जाते हैं, जितने भी विष्णु वहां पर है वो सब झूलते हैं। ये मुरली का प्रभाव देखकर गोपियां भी बहुत आश्चर्यचकित है, और वो बांस का भी गौरव करती है, और वो ब्रज की भूमि जहां पर बांस उगता है उसका भी गौरव करती है। क्योंकि हम रात दिन भर वेट करते हैं, गोपाल दिन भर रात भर वेट करते हैं और फिर उनका मिलन का समय होता है, लेकिन ये मुरली देखो दिन रात उनके होठों के अमृत को पीते हुए वहां लगी रहती है। और कहते हैं कृष्ण जो है ना उनके हृदय में जो अमृत है प्रेम का, वो होठों के माध्यम से मुरली के माध्यम से गोपियों के ग्वाल बालों के हृदय तक पहुंचाते हैं। वो जो अमृत है ना वो हृदय से होठों से मुरली से अलग अलग स्वरों में गोपियों के और ग्वाल बालों के हृदय को उज्ज्वल कर देते हैं। तो मुझे याद आई सुदामा की, तो सुदामा की कहानी ऐसी है कि सुदामा नारद मुनि ने उसको वरदान दिया था कि तुम कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगी। जब राधा रानी का दर्शन हुआ ना तो इतने खुश हो गए, तो सुदामा को भी आशीर्वाद दिया उन्होंने। सुदामा जो है वो समवयस्क गोप में से हैं, उन्होंने भी बहुत सारे प्रकार हैं, नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा, तो समवयस्क में भी ऊपर नीचे हैं बहुत सारे। तो समवयस्क में सुदामा सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय, और सभी ग्रुप में भी सुदामा सबसे श्रेष्ठ है प्रियतम होने के नाते, मतलब भगवान की प्रियता के रूप में। तो इसको ना रात को जब छोड़ने का समय आता था ना संध्या को, तो बहुत दुखी होता था, और रात भर ये रो रो के परेशान हो जाता था जब कब सुबह होगी। तो एक बार कृष्ण ने उसको कृष्ण को उसने बताया कि भैया तुम्हारे बिना मैं रात को जी नहीं सकता, एक दिन मैं रात को ही मर जाऊंगा, मुझे विरह सहन नहीं होता। तो कृष्ण ने कहा क्या करें उसके लिए, तो कहते हैं कि कम से कम एक चित्रपट दो आपका, ताकि आपका चित्रपट देखते रहूं मैं और थोड़ा सा तसल्ली हो जाए मुझे। तो ये गंभीर था ना मामला, मतलब दोस्त अभी जिंदा और मौत की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान यशोदा माई के पास गए और यशोदा माई को कहा कि मेरा एक दोस्त है, आप जानते हैं सुदामा, वो मेरे बिना रह नहीं सकता है, वो बहुत व्याकुल हो जाता है, तो वो एक चित्रपट की मांग कर रहे हैं, मैया आप चित्रपट का व्यवस्था कर सकते हो क्या। तो मैया भी अच्छे मूड में थी उस दिन, मैया ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, एक कागज ले लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट। तो कृष्ण को बड़ा नाराज हो गया, कृष्ण मैया मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, तुम मजाक सोच रहे हैं, मैं रोने लगे। वो तो मैया को समझ में आया गंभीर बात है, वो ये मजाक करने की बात नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरना नहीं, मैं बनाऊंगी उसका चित्रपट, तो मेरे पास उसकी योजना है। तो कृष्ण यशोदा माई ने चित्रा सखी को बुलाया, चित्रलेखा देवी जो चिकित्सापुर में रहती है, चिकसोली, जहाँ पर गेवरकुंड था, जहाँ दिन पहले हमने दीप दान किया था, वो गांव चिकसोली है, चिकित्सापुर कहते हैं उसको। तो चित्रा सखी जो है ना वो धर्म भानु की बेटी है, सुभगा देवी और धर्म भानु, और बड़ी मैंने कहा ना पक्षियों से बात करती है, हस्त सामुद्रिक ज्योतिष सब उसको पता है, धर्म भानु जी की पत्नी कन्या है ना वो, तो वो चित्रपट निकालने में बहुत कुशल है, नाम ही चित्रा लिखा है उसका। तो उसको बुलाया तो वो बड़े भाग्य अपना समझकर भाग कर अंदर भवन गई, यशोदा माई बुला रही है मुझे, तो क्या सेवा है। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया का चित्रपट चाहिए, तो हाँ बन जाएगा तुरंत, तुरंत भाग के चिकित्सापुर आई और बैठ गई बनाने के लिए। अभी देखो जब चित्रपट बनाने का समय होता है ना, समझो अभी आपका मुझे चित्र निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा महाराज जी ऐसे ही बैठना हिलना नहीं, फिर मैं यहाँ जाऊंगा और देख के उनका, अब वो यहाँ वहां देखेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे चित्रपट निकालने के लिए एक ही छवि चाहिए, एक ही अदा चाहिए, एक ही पोज चाहिए, है ना, तब मैं आपका चित्रपट निकाल सकता हूँ। लेकिन हुआ ये कि जब वो हृदय में उसने कृष्ण की छवि का ध्यान करना आरंभ किया कि उसको एक छवि पकड़नी है, उसका चित्रपट निकालना है, उसके मन में एक ही साथ में हजारों लाखों छवियां आई कृष्ण की, ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए, तो परेशान हो गई वो, उसका मन किसी भी एक छवि पर एकत्र एकाग्र नहीं हो सका। और बहुत देर तक प्रयास किया उसने, इतनी बड़ी सेवा मिली है मुझे और भाई मेरे मन में कुछ वो छवि फिक्स नहीं हो रही है। तो फिर उसने विचार किया कैसा क्यों हो रहा है, तो फिर सखियां आई उनकी, उनको भी बताया कैसे ऐसे हो रहा है, उनकी चर्चा हुई। सुनो अभी चर्चा का नतीजा क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा का नतीजा ये निकला कि तुमने राधा रानी से परमिशन तो ली नहीं, उनका आशीर्वाद तो लिया नहीं, कृष्ण की सेवा करने जा रहे हो, राधा रानी की कृपा लिए बिना तुम ये सेवा करने में सफल कैसे हो सकते हो। तो उसको भी ध्यान में आ रही, हाँ मैं तो उतनी एक्साइट हो गई थी कि मैं खुद ही बैठ गई। फिर वो राधा रानी के पास गई है और पूरी योजना बताई है, पूरा प्रसंग बताया है, तो राधा रानी ने बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देते ही एक ही छवि स्पष्ट रूप में उसके मन में स्थित हो गई और तुरंत उसने चित्रपट बनाया और चित्रपट लेकर वो तुरंत भागी नंद भवन में, यशोदा मैया को दिया, यशोदा मैया ने कृष्ण को दिया, कृष्ण ने इसको सुदामा को दिया और सुदामा ने कुछ कुछ तसल्ली प्राप्त किया उससे। पूरा तसल्ली नहीं हुआ लेकिन थोड़ा तसल्ली हुआ, जान तो कम से कम बच गई उसकी, है ना। तो ये हुई कथा चित्रलेखा देवी और सुदामा की। उसके आगे हम चलते हैं, जिसका स्थान है नाम है भानोकर, क्या बताया, उसका एक नाम और भी है जल महल। वो हमारा जो निवास स्थान है ना उसके 2 मिनट वॉकिंग पे है, लेकिन हमको इच्छा थी कि आपको उस पे बस में लेके जाएं, इसलिए हम करेला घुमा के आपको बस में लेके जाएंगे वहां तक। पहले हमारी प्रभु जी से बात हुई थी कि हम वहां तक चल के जाएंगे और वहां से बस में बैठकर आगे चले जाएंगे, तो हमने कहा नहीं हमको वहां पर भी बस में लेके जाना है, इसलिए हमने सोचा कि पहले करेला में आएंगे, यहाँ कथा करेंगे, फिर बजेश्वर महादेव जाएंगे, फिर भानोकर में बस में जाएंगे और वहां से फिर चल के जाएंगे दादा माधव तक, है ना। तो भानोकर और ये जल महल जो है वो इतना सुंदर और इतना रमणीय स्थान है, लीला भी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर लीला है। वो भानोकर यानी विश्वभानु महाराज जो राजा थे उनके खुद के निजी ऐसे बहुत तुल्य थे, उसमें से एक है भानोकर। एक है प्रिया कुंड ललिता जो पीले पोखर बना हुआ है, उसके आगे कीर्तिदा कुंड भी है, माता जी का भी एक और एक अलग कुंड है उधर, ऐसे कई कुंड है बरसाने में। तो ये कुंड जो है वो पुष्पानु महाराज का प्रिय कुंड है, वहां पर अपने गिने चुने सखियों को लेकर राधा रानी भी स्नान करती थी। तो एक बार वो अपने गिने चुने सखियों के साथ में भानुखर में स्नान कर रही थी। हाँ सोचना आरंभ कीजिए आप, आरंभ कर रही थी स्नान कर रही थी, तो उसमें उतने में नंदगांव से कृष्ण आए। मैंने कहा बताया आपको कृष्ण को अधिक देर नंदगांव में रहा जाता नहीं है, वो बीच बीच में वहां पर आते रहते हैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर। तो पता चला कि भाई वहां पर स्नान कर रही है, तो वो नंदगांव की ओर का जो किनारा है वहां आए और बीच में ये स्नान कर रही है। तो उसने कृष्ण भगवान ने सखियों से पूछा कि ये जो लाली है स्वर्ण कांति वाली वो कौन है। अभी एक सादा प्रश्न पूछा उन्होंने, वो सब जानते हैं लेकिन फिर भी वो लीला के लिए पूछते हैं, तो अभी उसका उत्तर देना चाहिए सिंपल कि नंद बाबा की पुत्री पुत्र है ये पुत्री है सॉरी वृषभानु महाराज की पुत्री है। तो ललिता को पता नहीं क्या सटका दिमाग उसका, उसने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या जरूरत है इनका पूछने के लिए, चले जाओ यहां से, कोई शिस्त नहीं कुछ नहीं कोई संस्कार नहीं, आ गए पूछने के लिए, क्या काम है तुम्हारा आने के, चले जाओ यहां से। तो राधा रानी को बड़ा खराब लगा, इतना सिंपल प्रश्न पूछा, कोई आतंक नहीं किया, कोई गाली नहीं दी, कोई ऐसा कुछ ताना नहीं मारा, तो इतना चिढ़ने की जरूरत क्या है। तो ललिता से कहा तुमने ऐसा क्यों उत्तर दिया उसको, मुझे नहीं अच्छा लगा, चलो मैं आपके हाथ नहीं नहाती, ऐसे करके वो अलग हो गई और अलग से एक जगह पर अपना अपना स्नान करने लगी। और सखियां भी एकदम अचानक रूठ गए, रे अचानक राधा रानी ने ऐसा रुख अपना लिया कि पता लगा था कि उनको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी वो तो पूरा बाजी उलट गई। तो वो अपने आप चुपचाप स्नान कर रही है, राधा रानी वहां चुपचाप स्नान कर रही है, उतने में ये सब तो देख रहे हैं ना, अपना प्रेक्षक तो खड़ा है उधर, वो देख रहा है सब क्या हो रहा है, अपने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो रहा है। तो वहां से डाइव मारते हैं पानी में और अंडरग्राउंड स्विमिंग करते हैं, अंडरग्राउंड स्विमिंग करते करते खोजते खोजते राधा रानी के चरणों को पास आते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और उसके ऊपर आते हैं, उनके चेहरे के सामने आते हैं, वापस पानी में अगर भाग जाते हैं। इतनी सी लीला है, ज्यादा कुछ लीला नहीं है। कृष्ण भगवान ने मौका लिया है राधा रानी के चरण पकड़ने का जल के अंदर, और एकदम राधा रानी चौंक गई है, जब उनको कुछ अपेक्षा नहीं थी, कोई किसने पकड़ा पाव, पाव पकड़ने का आश्चर्य खत्म होने के पहले ही कोई सामने प्रकट हो गया चेहरे के सामने ही और वापस गायब हो गया। तो इल्ला सप्रमाण है शास्त्र में। तो ये सुंदर भानुकर इतना विशाल और सुंदर है कि पिछले वर्ष हमने आई कैंप में वहां पर दीपोत्सव किया था, उतने विशाल हमारे भाई साहब ने भी वहां पर दीप दान किया था, दीप लगाए थे, साफ सफाई किया था उसका, पूरा सारा सम्मार्जन किया था। बहुत सुंदर वन है वो, बहुत सुंदर कुंड है, तो आप सब लोग जाइए वहां पर दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और उसको जल महल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा कुंड बनाया है विश्वभर महाराज ने कि वो जहां पर एंड है पानी का उसके आगे तक वो महल बना हुआ है ऐसा। तो राजा रजवाड़ी थे ना पहले, तो वो राजा राजा रानियां सब बैठते थे और गर्मियों के समय पे हवा खाते थे उधर से, वो जल नीचे ठंडक सा उसका हवा जो है वो बैठकर अलग अलग झरोखों में से जल का आनंद लेते थे, वैसा ही कुसुम सरोवर में भी है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो आप वो जल महल भी देखिए, बहुत सुंदर है, अभी तो बहुत कबूतर खाना बन गया है लेकिन हम लोग कभी कभी साफ करते बीच में इसको, बहुत सुंदर स्थान है, उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है ब्रज फाउंडेशन की तरफ से। आप दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बहुत दिव्य लीला स्थली है वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।